ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सविता बहन विराजमान हैं। हम उनका एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डॉक्टर सविता बचपन से ही ज्ञान में हैं। 1975 से आप राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और ज्ञान योग का प्रयोग कर रही हैं। आपने 1989 में मानव उत्थान की सेवाओं के लिए अपने को विश्व सेवा के लिए समर्पित किया। आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री प्राप्त की। आपने 1991 से 2000 तक उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर, माउंट आबू के हॉस्पिटल में एज डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी। 2007 तक आपने आदरणीय डॉक्टर दादी प्रकाशमणि जी, पूर्व मुख्य प्रशासिका जी की चिकित्सक सेवाओं का सहयोग दिया। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के विमेन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप कुशल वक्ता, विनम्रचित, सहयोग की भावना वाली हैं। आपने यूके, यूएसए, जापान, चाइना, हांगकांग, मलेशिया, करेबियन कंट्रीज में अपनी विश्वव्यापी सेवाएं दी हैं। आप मानसरोवर जो नीचे कॉम्प्लेक्स है उसकी भी डायरेक्टर हैं। आप में बहुआयामी व्यक्तित्व है। आपको अनेकों सम्मानित वुमेन विंग के और अनेक सामाजिक कार्य सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। ऐसी उदाहरण स्वरूप प्रखर वक्ता को हम अपने बीच में आमंत्रित करते हैं कि वो आज हमें अचल, अडोल, अव्यक्त स्थिति के ऊपर हमें प्रकाश डालें कि अनेक उतार चढ़ाव, माया की बॉक्सिंग होते हुए भी हम अचल अडोल कैसे बने। ओम शांति। हम निवेदन करते हैं डॉक्टर सविता बहन से कि वो अपने विचार गुह्य सूक्ष्म हम सबको प्रदान करें कि हम अपनी अचल अडोल अवस्था को कैसे बनाएं।
ओम शांति। ओम शांति। आप सभी यहाँ पांडव भवन में भर्ती करने पहुंचे हैं तो अपने आप को महान भाग्यशाली अनुभव कर रहे होंगे। कौन कौन पहली बार आए हैं पांडव भवन में? पहली बार रह रहे हैं, भर्ती करने नहीं, पहली बार रह रहे हैं तो ये स्थान ही हमें अचल अडोल बनाता है। स्थिति का संबंध स्थान से भी होता है ना? तो पांडव भवन में हमारे बाबा, मम्मा, दादियों की तपस्या का बल है और वो हमें मदद करता है। सहज ही बाबा से हमारा योग लगता है, लगाना नहीं पड़ता है। तो ये जो अचल अडोल हमारी स्थिति रहनी चाहिए ज्ञान योग के फल स्वरूप, क्योंकि वर्तमान समय ही है समस्याओं का समय और ऐसे में आज मनुष्य का मन दुखी भी होता है और शांत भी होता है, टेंशन में भी आ जाता है, भय भी होता है, परेशान भी होते हैं। इसको कहते हैं मन की हलचल। तो जैसे हलचल वाली चीज जो होती है उससे सुकून नहीं मिलता है ना, जैसे लाइट है बार बार आती जाती रहेगी या हिलती रहेगी तो क्या होगा, अनकंफर्टेबल लगेगा ना। ऐसे मन की स्थिति भी जब बार बार हलचल में आती है तो वो सुख हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए अचल अडोल एकरस स्थिति के लिए बाबा हमें कहते हैं। तो जितना ज्ञान की शक्ति है हमारे पास, जितना हम ज्ञान को अपने जीवन में यूज करते हैं उतना हम अचल अडोल रह पाते हैं। हमारे जीवन में निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख बाबा हमेशा कहते हैं, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुखी भी होते हैं कभी दुखी भी होते हैं, कभी सफल होते हैं कभी असफल भी होते हैं, कभी हमारी प्रशंसा होती है कभी हमारी निंदा ग्लानी भी होती है। तो ये स्थितियां जो अति की हैं वो मन को विचलित करने वाली होती हैं। व्यक्ति बहुत सुखी हो जाए सफल हो जाए बहुत उसको प्राप्ति हो जाए तो अहंकार आ सकता है अभिमान आ सकता है, और व्यक्ति अगर दुखी है असफल है और सब उसकी ग्लानी ही करते रहते हैं तो वो बहुत निराश हताश भी हो सकता है। लेकिन योगी की सिद्धि क्या है, योग की सिद्धि क्या है, स्थिर चित्त कहते ना, योगी स्थिर चित्त होता है, गीता में भी इसके महत्व को बताया गया। स्थिर चित्त माना हर स्थिति में संतुलित है, ना सुख में सफलता में वो अहंकार में आता है और ना ही दुख में और असफलता में वो निराश और हताश होता है, क्योंकि ज्ञान है। जैसे कहा ना, ज्ञान से जो समझ और शक्ति हमें मिलती है उससे हम अपने मन को शांत और स्थिर कर लेते हैं। तो पता है कि ना सुख सदा रहने वाला है और ना ही दुख सदा रहने वाला है, हर स्थिति परिवर्तनशील है, तो ये समय भी निकल जाएगा। और जो समय निकल गया वो फिर 5000 साल के बाद ही वापस आना है, फिर दोबारा ये वापस नहीं आना है। तो हर स्थिति में समान, उसको हम कहेंगे अचल अडोल। तो बाबा कहता है 3 बिंदु लगाओ, 3 बिंदु आपको अचल अडोल बनने में मदद करते हैं। बाबा ने हमको त्रिकाल दर्शी बनाया, 3ों कालों का ज्ञाता बनाया। तो बहुत से राज तो हमको उसमें ही समझ में आ गए। कहते हैं ना, जो राज को जानने वाले हैं वो नाराज नहीं होते, ये क्यों हो रहा है ड्रामा में। 3ों कालों का ज्ञान माना हमें ड्रामा की पूरी नॉलेज है, तो पता है कि ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, कोई भी लोग अगर ऐसा कर्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मालूम है या नहीं मालूम है। सारे राज समझा दिए बाबा ने, नहीं समझाए क्या कहेंगे, मालूम है ना। तो इसीलिए वो राज जैसे ही हमें उत्तर मिल जाता है हमारा मन शांत हो जाता है, हर क्यों का उत्तर है हमारे पास। अब एक बिंदी, पहली बिंदी है आत्मा, आत्मा बिंदी, तो मैं आत्मा बिंदी हूं, इससे हमें सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर मिले हुए हैं। मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली हूं और अन्य आत्माएं भी अपना कर्म कर रही हैं, तो साक्षी होकर देखना, ये हमें समझ आ जाती है कि दूसरे के पार्ट को भी साक्षी होकर देखना और हम भी जो कर्म कर रहे हैं ड्रामा में ये भी हमारा पार्ट है, ये मैं नहीं हूं। दुनिया में लोग कैसे पहचानते अपने आप को, जो कर रहे हैं उससे पहचानते हैं, है ना। और हमारी पहचान हमें समझ में आ गई कि ये तो मेरा पार्ट है, ये मेरा कर्म है, ये मैं नहीं हूं, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूं, करावनहार हूं, मैं आत्मा मालिक हूं। और फिर कौन सी आत्मा हूं, सिर्फ आत्मा हूं नहीं, कौन सी आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हम ही देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं, और कल्प कल्प के बाबा के चुने हुए हम कोटों में कोई कोई में भी कोई आत्मा है। तो बाबा ने वो स्वमान भी हमें दिए, जो सीट बाबा कहता है कि ये स्वमान की सीट, ऊंची सीट आपको मिली हुई है, और जब उस सीट पर हम होते हैं तो फिर माया तो ऑपोजिशन में है ना, क्योंकि माया भी हमको हलचल में लाती है, तो माया उस सीट से हमको नहीं हिला सकती अगर हम अपनी सीट पर हैं, अपनी आत्मा की वो स्वमान की सीट पर है। और अगर हम सीट पर नहीं हैं तो फिर माया अनेक तूफान लेकर आती है, जैसे कल भी बाबा ने कहा कि ऐसा मत समझो कि माया के तूफान नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमारी बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग में दोनों तरफ को ही आता है खेलना, अगर एक 10 मारेगा तो दूसरा 5 मारेगा ही। तो ये नहीं सोचो कि बाबा का बन गए तो माया के तूफान नहीं आएंगे या समस्याएं नहीं आएंगी या परिस्थितियां नहीं आएंगी। वो आएंगी, लेकिन हम विजयी हैं। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान है तो हमको उस पर विजयी बनना है। जैसे कहा, आप महावीर हो और विजयी हो, तो वो अगर हमारा सम्मान है तो हम कोई भी तूफान पर विजयी नहीं बनते, वो तोहफा बन जाता है हमारे लिए। तूफान ही क्या हो जाते हैं, तोहफा बन जाते हैं, यानी वही हमको आगे बढ़ाने का साधन बन जाते हैं, वही हमें उड़ती कला में ले जाने के लायक बना देते हैं। तो आत्मा बिंदी कैसे यूज करना है, वही हमारी अव्यक्त स्थिति भी है। ये शरीर व्यक्त है, आत्मा तो अव्यक्त है ना। तो जितना हम अशरीरी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, और बाबा कहता है ये अभ्यास आप करते रहो, है ना। कुछ संडे पहले मुरली थी, बाबा ने कहा हर घंटे में 10 मिनट, अगर 10 मिनट ज्यादा लगता है तो कम से कम 5 मिनट, याद है ना। तो कम से कम 5 मिनट भी हमें विदेही स्थिति का अभ्यास करना है, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। और ये हमारी ड्रिल है, यानी जब चाहे हम निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं, जब चाहे हम आकारी स्थिति में स्थित हो जाएं, जब चाहे हम इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करें, माना टाइम नहीं लगे हमको, 1 सेकंड में आवाज में आए और 1 सेकंड में आवाज से परे। तो बाबा ने कहा जैसे वो शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, क्यों योग करते हैं, योग माना वो जो हठ योग जिसको कहते हैं, योगासन करते हैं कि शरीर हमारा शक्तिशाली रहे, फिट रहे। तो ऐसे ही आत्मा शक्तिशाली रहे, उसके लिए हमें ये ड्रिल, रूहानी ड्रिल भी रोज करना है। तो हम करते तो हैं, जब मुरली सुनते हैं, योग में बैठते हैं तो हमारा अटेंशन रहता है, वो भी पूरा टाइम नहीं रह पाते, कोशिश करते हैं, लेकिन निरंतर वो आत्मिक स्थिति रहे वो हम भूल जाते हैं। क्योंकि जब हम कर्म में व्यवहार में आते हैं तो कर्म कॉन्शियस हम ज्यादा हो जाते हैं, कर्म में बुद्धि रहती है, फिर वो कब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं हमको भी पता नहीं चलता। और बॉडी कॉन्शियस होने की निशानी क्या है, बॉडी कॉन्शियस में आ गए उसकी निशानी क्या होती है, हमारे पुराने संस्कार काम करने लगते हैं, क्योंकि देह अभिमान विकारों की जड़ है, शुरू हो जाता है। कब गुस्सा आ जाएगा पता नहीं, कब मन दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। हम सोचते हैं अमृत वेला भी किया था, मुरली भी सुनी थी, फिर ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि विस्मृति में आ गए। जो स्मृति स्वरूप हमारा होना चाहिए वो नहीं है, तो हलचल में आ गए ना। अचल स्थिति कब रहेगी, इसीलिए बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया कि हर घंटे में अगर हमने कुछ मिनट भी अपनी वो ओरिजिनल स्थिति आत्मा की अनुभव कर ली तो वो हमारी निरंतर हो जाएगी। कोई भी अभ्यास हम बार बार करते हैं तो वो हमारा फिर नेचुरल नेचर हो जाता है। अभी देह अभिमान की नेचर नेचुरल है तो हम बिना सोचे समझे देह अभिमान में आ जाते हैं, लेकिन कौन सी नेचर नेचुरल होनी चाहिए, देही अभिमानी की नेचर नेचुरल होगी। और जितनी वो नेचुरल होगी उतना हमारा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप ये इमर्ज रहेगा, और दूसरों को भी हमसे यही अनुभव होगा, क्योंकि ये आत्मिक गुण है। तो जितना वो स्मृति है उतना ही आत्मिक गुण कर्म और व्यवहार में होंगे, और कईयों से अनुभव भी होता है जो इस अभ्यास को करते हैं, टेंशन रखते हैं, वो जब दूसरों के संबंध संपर्क में आते हैं तो लोग उनको कह भी देते हैं, आपसे बात करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, शांति मिलती है, या हम दुखी थे लेकिन मन को जैसे सुख मिल गया, क्यों? कोई हम कोई ऐसा कुछ कर नहीं रहे लेकिन सिर्फ स्वरूप है, तो वो हमारे वाइब्रेशन उनको वो अनुभव कराते हैं। जैसी हमारी स्थिति होगी वैसे हमारी वृत्ति और वाइब्रेशन होंगे। इसीलिए बाबा कहता है वृत्ति से वायुमंडल बनाना, वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन करना, ये सूक्ष्म सेवा है। उसमें हम वाणी से सेवा नहीं कर रहे, ये मनसा सेवा का ही स्वरूप है, लेकिन पहले मेरी वृत्ति पावरफुल होगी, मेरी वृत्ति वो शांत स्वरूप होगी, सुख स्वरूप होगी, तभी तो हम दूसरों को वो अनुभव करा पाएंगे। तो इसीलिए हम देह अभिमान में आए, माना हलचल में आए, मन हलचल में आएगा, शांत होगा, दुखी होगा, लेकिन अगर हम देही अभिमानी स्थिति में हैं तो हम भी अचल और दूसरों को भी वही स्थिति का अनुभव हम कराएंगे। फिर दूसरी आत्माओं के पार्ट को देख करके सबसे ज्यादा मन हलचल में आता है, इसने मुझे ऐसा कह दिया, एक शब्द नहीं सुन सकते किसी का, और एक शब्द क्या कह दिया, इतनी फीलिंग आ गई कि दो दिन तक मेरा योग ही नहीं लग रहा, फीलिंग में आया ना व्यर्थ संकल्प, ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा बोलना चाहिए, करना चाहिए, क्या चलता है, क्यों, क्या व्यर्थ संकल्प की क्यों क्या है, क्यों क्या में हम इतना चले जाते हैं कि सिर भारी है, बड़ी मुश्किल से फिर ज्ञान से उसको ठीक कर पाते हैं, तो क्या कहेंगे। तो ये तो कोई हमें कुछ कहेगा नहीं, ऐसा होगा क्या, होगा हमारे आसपास कोई ना कोई हिसाब किताब चुपतू करने वाली आत्मा होती है। वो आई हमारे पास इसलिए है क्योंकि जन्मों जन्मों का हिसाब, 63 जन्मों से जो हमारे हिसाब किताब बने हैं उनको अब पूरा करना ही है, क्योंकि ये लास्ट जन्म है सभी का, बिना हिसाब किताब चुपतू किए तो वापस जाएंगे नहीं, तो कोई हम पर गुस्सा करेगा, जैसे कहा कोई गाली भी देगा, माना कोई हमारी इंसल्ट भी कर देगा, और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हम कब होते हैं, हलचल में कब आते हैं, मानो आप ज्ञान में चले, आपके परिवार वाले कोई ज्ञान में चलते नहीं, बहुत विघ्न रूप बनते हैं, जब चाहे आपको कुछ ना कुछ उल्टा बोल देते हैं, तो क्या करेंगे, वो चेंज हो जाएंगे या आपको ही चेंज होना पड़ेगा, वो तो चेंज नहीं होंगे। तो फिर हाँ, तो फिर हमें जो बाबा ने समझ दी, अब यहां पर हमें त्रिकालदर्शी बनकर के ड्रामा के ज्ञान को यूज करना है कि वो आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, और जो भी हमारे पुराने हिसाब किताब है हमने पहले कभी उनके साथ किया है ऐसा, तभी आज वो आत्माएं हमारे साथ ऐसा कर रही हैं, लेकिन वो फिनिश कब होगा, जब हम फिर भी उनके लिए अच्छा करेंगे, शुभ भावना रखेंगे, हाँ उनके लिए कल्याण की भावना ही हमारे मन में रहे, सहयोग की भावना ही हमारे मन में रहे, तो फिर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हो सकता है उसमें हमें बहुत धीरज रखना पड़े, एक बार में नहीं चेंज होता, कोई दो बार में नहीं होता, चार बार में नहीं होता, हाँ वो जितनी बार में बना है उतनी बार आपको आपको धीरज रख के वैसा ही अपना रूप स्वभाव रखना पड़ेगा, तब जाकर उनमें भी फिर परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, पर एक बार में तो नहीं आएगा। कोई भी गहरा दाग लगा हुआ होता है तो एक बार रगड़ने से छूट जाता है, कितना रगड़ना पड़ता है उसको, है ना। तो काफी जो भी गहरे संस्कार होते हैं वो इतना आसानी से नहीं जाते हैं, तो उसके लिए हमें समय देना पड़ता है, थोड़ा शक्ति देनी पड़ती है, अटेंशन देना पड़ता है। तो ऐसी आत्माओं के प्रति भी अगर हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स रहती हैं तो फिर हम हलचल में नहीं आते, लेकिन अगर हम क्यों क्या में गए, भूल गए ज्ञान को, बाबा ने जो हमें वो ड्रामा का ज्ञान समझाया, तो फिर हम हलचल में आए बिना क्या अनुभव है, क्या अनुभव है, यही है ना। तो कब हम अपने आप को स्थिर कर पाते हैं, जब हम ये समझ लेते हैं कि हाँ ये आत्मा ऐसा क्यों कर रही है, और अब हमें इसके लिए मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। अब वो आत्मा मेरी बात नहीं मान रही, कोई नहीं मानते, जो हम चाहते हैं वो नहीं करते, तो उनकी अपनी सोच होती है, क्योंकि हर एक आत्मा अलग अलग है, हर एक का व्यवहार सोच जो पार्ट कहा, तो वो अपने ढंग से सोचते हैं और वो अपने ढंग से राइट भी हैं, वो गलत भी नहीं है अपने ढंग से, हम अपने ढंग से राइट हैं, हम जो सोच रहे हैं हम ज्ञान के ढंग से सोच रहे हैं। तो फिर हमें उनकी बात को भी समझना होता है, उनका नजरिया क्या है। अगर हम उनको समझते हैं तो फिर हम उनको भी स्वीकार करते हैं। तो जो भी हमारे आसपास जैसे भी हैं उसको हमें स्वीकार करना है। वो मेरे जैसे बन जाएंगे ये संभव नहीं है, हो जाएंगे चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, आप उनको अपने जैसा बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। आप समझा सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जो उनकी सोच है वो अपने ढंग से ही वो काम करेंगे, और हमको उनको स्वीकार करना होता है, क्योंकि उस आत्मा का वो पार्ट है या उसका जो भाग्य है। आप समझेंगे बच्चे ज्ञान में आ जाए, हम ज्ञान में चले, इनको भी समझ में आना चाहिए, पर उनको तो जरा नहीं समझ आता। तो नहीं समझ आता तो हमें उनके पार्ट को स्वीकार करना है कि ठीक है इनका ड्रामा में जो पार्ट है। तो भगवान ने हमें भाग्य दिया है, अपने उस भाग्य से हम उन आत्माओं के प्रति जो भी कल्याण की भावना रखते हुए उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, वो हमें सहयोग देना। लेकिन वो हमारे जैसे सब हो जाएंगे ये संभव नहीं है। तो जितना हम अपने आसपास की आत्माओं को भी, जो भी संबंध संपर्क में है, रिश्ते में है, उनको भी समझ कर चलेंगे, माना उनके पार्ट को समझ कर संस्कार मिलाकर चलना है, तो हमें मिलाकर चलना है, हमें उनसे संतुष्ट भी रहना है और संतुष्ट भी करना है, जिसको बाबा कहते हैं सुख देना है और सुख लेना है। तो हम ये देखें कि उनको कैसे सुख हम दे सकते हैं, ऐसा समझकर आत्माओं के साथ चलेंगे तो हमारी स्थिति अचल रहेगी, और नहीं तो हम आत्माओं से ही डिस्टर्ब होते रहते हैं, हलचल में आते रहते हैं। और दूसरा बिंदु है हमारा बाबा बिंदु है, बाबा हमारे साथ है, स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारा साथी है, और भगवान हमारा साथी है। तो फिर कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। तो फिर तूफानों से डरने की बात ही नहीं, इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। कोई भी, जैसे ओम मंडली में भी हम सुनते हैं, जब यज्ञ शुरू हुआ कितने विघ्न, एक के बाद एक विघ्न, विघ्न खत्म ही नहीं होते थे, क्योंकि सारा नया ज्ञान, और जो नया ज्ञान था वो लोगों को समझ नहीं आया, जो बाबा के बन गए उनकी बात अलग। तो फिर कोर्ट तक भी जाना पड़ा, बाबा को क्या क्या, बाबा के ऊपर कलंक नहीं लगाए, मारने तक आ गए, जान से भी मारने के लिए आ गए, तो भी क्या बाबा हलचल में आए, क्योंकि निश्चय था, अटूट निश्चय था शिव बाबा के ऊपर। किसका कार्य है? भगवान का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है, और उसका कार्य है इसलिए उसकी जिम्मेवारी है, और हम तो, हमको भी उसने अपना बनाया है तो वही संभालेगा, वही चला रहा है, वही करा रहा है, और इसीलिए बाबा कैसी भी स्थितियां रही लेकिन सदा मुस्कुराते रहे, खुद भी अचल रहे और सबको भी बाबा ने अचल रखा। तो हमारे सामने तो कोई इतने बड़े बड़े पेपर नहीं आते, बाद में तो बेगरी पार्ट भी चला यज्ञ में, जब यहां आ गए, जब सेवा के लिए जाना था उसके पहले यज्ञ में वो स्थिति भी हो गई, तो भी खाने को भी नहीं था, तो भी बाबा ने कभी कभी चिंता नहीं की, बाबा को कभी कोई फिक्र नहीं हुई, कारण निश्चय, शिव बाबा पर इतना अटूट निश्चय था। ये तो पेपर है, बाबा पेपर तो लेगा ना, अगर हम पढ़ रहे हैं वो हमारा परम शिक्षक है और हमें वो ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट की क्लास कब आगे बढ़ती है, कब आगे बढ़ती है, जब पेपर होता है, बिना पेपर के कहे मैं पास हो गया तो कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा ना। यह एक सैनिक बिना युद्ध किए कहे भाई मैं तो युद्ध में विजयी हो गया तो कोई मानेगा? युद्ध करके विजयी होते हैं ना, बिना युद्ध किए तो नहीं हो सकते। तो यहां भी पेपर तो होंगे ना हमारे, तो वो पेपर आते हुए भी हम अचल अडोल हैं, तब हम पास भी दौनर हैं। और अगर हम हलचल में आ गए तो पास है या फेल है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हलचल में आ गए तो फेल, क्यों क्या में चले गए तो फेल, और फुल स्टॉप लगा सके तो पास। इसलिए बाबा कहते हैं पास विद ऑनर, माना बिल्कुल अचल। कोई भी पेपर आए, हमारे अपने जीवन का अनुभव है, जब हम ज्ञान में आए, मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब मैंने कोर्स किया तो 5-6 महीने हुए थे, ज्यादा बहुत समय तो नहीं दे पाते थे, बीच बीच में कभी मुरली सुनने चले गए, ऐसे बचपन से पता था, लेकिन पूरा कोर्स ज्ञान समझा वो कॉलेज में आकर के। फिर बाबा मिलन का सीजन चल रहा था तो बहन ने हमको कहा कि आप मिले हो बाबा से कभी, मत बन गए हो? हमने कहा नहीं। तो वो हमको ले आए तो बाबा से मिले तो बहुत अच्छा अनुभव। अच्छा क्या मतलब, अटूट निश्चय हो गया कि हाँ भगवान से मिले और ये भगवान का कार्य है और जो बाबा कहते हैं वो ही करना है। माना जैसे एक निश्चय हो जाता है, पहले ऐसे था ठीक है अच्छा है सुनना चाहिए फायदा होता है, ये अलग स्टेज होती है हाँ कि कुछ सुनना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, शांति मिलती है हाँ, कंसंट्रेशन बढ़ती है, पढ़ाई अच्छी होती है, माना दूसरी दूसरी ऊपर ऊपर की बातें। ऐसे पूरा निश्चय नहीं था कि पूरा शिव बाबा का ही कार्य है, माना भगवान का ही कार्य, भगवान आ चुके हैं ऐसे कहते थे, लेकिन कोई इतना अंदर में 100% फेथ हो वाली बात नहीं थी। और वैसे भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो थोड़ा ज्यादा ही क्यों किया वाले होते हैं, तो मतलब लाइन ही थोड़ी उस तरह की थी। फिर जब बाबा से मिले और जो बाबा से मिलकर अनुभव हुआ, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाती उसके, लेकिन यहां से मतलब वो अटूट निश्चय वाली बात कि भगवान मिला है। तो हमारे पेरेंट्स को पता चला क्योंकि हमने सुनाया कि मैं माउंट आबू गई थी, मैं उदयपुर पढ़ती थी, उदयपुर से यहाँ माउंट नजदीक था और हमारे पेरेंट्स रहते थे कोटा में। उस समय सब जगह मेडिकल कॉलेज नहीं थे तो हमारा एडमिशन यहाँ हुआ। तो फिर जब उनको पता चला तो नाराज हुए क्योंकि उनको मालूम था ब्रह्मा कुमारी उसके बारे में और वहां जाने का मतलब क्या है ये भी पता था कि ये फिर अब पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं देगी और ज्यादा उस तरफ गई तो कहीं छोड़ ना दे, इतना खर्चा होता है, डॉक्टरी पढ़ने में कोई आसानी से सब चीजें नहीं होती हैं। तो मना उनको चिंता भी हुई और बहुत नाराज भी हुए वो, और उन्होंने हमको कहा कि अगर आपको नहीं जाना है और अगर आप गई ज्यादा तो हम आपको फीस नहीं देंगे, आप सोच लो आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है या ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो फिर ठीक है, अब निश्चय था हमको बाबा पर कि बाबा अपने आप कुछ करेगा, जो भी परीक्षा आई है। तो हमने बाबा के ऊपर छोड़ दिया क्योंकि बाबा को तो छोड़ना नहीं है। तो फिर ऐसा हुआ, हमारी जो छोटी बहन थी वो जॉब में आ गई थी, वो टीचर बन गई थी, उन्होंने उसका एग्जाम दिया था और वो पास होके उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, लेकिन कोई गांव में वो जॉब कर रही थी। तो जब उसको पता, उन दिनों में ये सब फोन वोन मोबाइल वोबाइल तो होते नहीं थे, आपको बुक करके फोन करना पड़ता था। तो जब उसको पता लगा तो फिर उसने मुझे कहा कि पिताजी इतना स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, और सचमुच उन्होंने फीस देना बंद कर दिया था मुझे। तो फिर उसने मुझे कहा कि दीदी आप चिंता नहीं करो, अभी मैं कमा रही हूँ तो कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं आपका कर लूंगी। तो बस फिर मेरा रास्ता निकल गया। बाद में मैं फिर बाबा मिलन में गई दोबारा एक बार, फिर बहन जी लेके गई हमको, तो उन्होंने कहा कि बाबा इनको बहुत वो है, बंधन है, इसको बंधन ही बोलते ना कि भाई घर वालों का बंधन है, उनको आने नहीं देते हैं। तो बाबा ने मुझे कहा कि जहां लगन है वहां विघ्न ठहर नहीं सकता, और हिम्मत है तो बाप की मदद है ही है। और विघ्न ऐसे होता है जैसे मक्खन से बाल। तो सचमुच बाद में तो मुझे लगा ही नहीं, और बाद में 3-4 महीने में तो वो ठीक भी हो गए। माना उनको समझ में आ गया कि अब निश्चित है कि जब आप समझदार हो जाते हैं और हायर स्टडीज में होते हैं तो फिर कि बच्चों को जो करना है वो करना ही है, अगर उसकी लगन है तो उसको हम रोक नहीं सकते। माना फिर वो अपने आप ठीक भी हो गए, और बाद में जैसे ही मेरा पूरा हुआ और यहाँ पर हॉस्पिटल खुला। ये भी देखो ड्रामा में कि बाबा ने जैसे मानसिक रूप से मुझे तैयार किया, और मेरा डिग्री होते ही यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आ गया, और हॉस्पिटल बनने से पहले यहाँ मैं पहुँच गई, और हॉस्पिटल शुरू होते ही मैं पेरेंट्स को यहाँ लेकर आई, उनको दिखाया मैंने कि ये सब, क्योंकि उनको ये भी डर था कि ये करेगी नहीं। माना भले डॉक्टरी करेगी लेकिन पता नहीं ये आगे उसको कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, जॉब करेगी कि नहीं करेगी। तो जॉब करने की नौबत नहीं आई, मैं सीधा यहाँ ही आ गई, और फिर यहाँ ग्लोबल में सेवाएं शुरू हुई, और उन्होंने सब देखा और उनको काफी अच्छा लगा, क्योंकि उसके पहले वो कभी मधुबन आए नहीं थे। आए ब्रह्मा कुमारी इसको जानते थे, कुछ क्लासेस भी की थी, लेकिन ऐसे निश्चय बुद्धि हो ऐसे नहीं थे। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर वो ज्ञान में चलने लगे, और बहुत अच्छी तरह फिर वो ज्ञान में चले, और ना सिर्फ वो लेकिन हमारी छोटी बहन जिन्होंने सहयोग किया वो भी समर्पित हो गई, और वो यहाँ है अपना इंदौर हॉस्टल, जो कुमारियों का हॉस्टल चलता है ना उस, क्योंकि वो टीचर थी तो इंदौर जोन के हम थे, तो वो ओम प्रकाश भाई जी ने उनको वहाँ सेट कर दिया कि ये बच्चों को अच्छे से संभाल पाएंगी। तो वो वहाँ ही सेवा देते हैं, मतलब समर्पित हैं। और फिर एक और बहन समर्पित हुई, वो ORC में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देती। तो ऐसे पूरा परिवार जो है फिर ज्ञान में आया। तो निश्चय बुद्धि था बाबा के ऊपर, अटूट निश्चय था, तो आए विघ्न, है ना, हिलाने वाली चीजें आई, लेकिन न सिर्फ पार हुई लेकिन अनेक आत्माओं का कल्याण भी हो गया उसके साथ। हिम्मत रखी तो जैसे बाबा ने कहा, जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद है ही है। तो पेपर नहीं आएंगे वो नहीं, और हम सभी अपनी अपनी रीति से, हर एक ब्राह्मण इस तरह के पेपर तो पास करता ही है, कोई ना कोई पेपर, किसी के कम किसी के ज्यादा, पर ऐसे पेपर हम सबको पास करने ही होते हैं। तो वो निश्चय की परीक्षा भी हमारी होती है कि कितना बाबा में हमारा अटूट निश्चय है, और जितना निश्चय होता है वो हमें ऐसे ही लगता है जैसे मक्खन से बाल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं ना। हमारे घर वाले कुछ कहते रहेंगे, वो हमारे कान में कुछ लगता ही नहीं है कि ये कुछ कह रहे, क्योंकि हमें पता है हमें क्या मिला है ना। ओम मंडली के टाइम भी गीत था एक, दुनिया कहती हमको पागल और हम कहते दुनिया पागल। तो उनको समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, और हमें पता है कि दुनिया को तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो तो पूरा ही अज्ञान अंधेरे में है। तो इसीलिए हमें फिर उसका कोई असर होता नहीं होता है। जिनको सच में पूरी लगन पूरा निश्चय होता है बाबा के ऊपर, 100% निश्चय होता है, उनको दुनिया की बातों का कोई असर नहीं होता है। है अनुभव, जिसको है अनुभव वो हाथ उठाइए, देखो मेजोरिटी को है, बस माइनॉरिटी हाथ नहीं उठा रहे। तो उनके निश्चय में परसेंटेज है, मतलब कई होते आधे आधे होते ना, आधे उस तरफ होते हैं आधे इस तरफ होते हैं। बाबा भी अच्छा है ये भी अच्छा है, थोड़ा इसका मजा ले लो थोड़ा, तो आधे आधे होते हैं तो फिर क्या होता है, दो नाव में पैर रखेंगे तो क्या होगा, मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए पूरा निश्चय होना चाहिए, 100% जो बाबा ने कहा बाबा की श्रीमत अनुसार ही हमें चलना है, और विजय हमारी है ही है। और इसीलिए ड्रामा का बिंदु लगाना, माना ड्रामा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है और बाबा कल्याणकारी है, इसलिए हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। तो चाहे कुछ भी हो रहा है, कितना भी बुरा हो रहा है, ऐसी अनहोनी हो जाती है कई बार, और ज्ञान में आने के बाद हो जाती है। ज्ञान में आने के पहले सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कईयों के साथ ऐसा होता है, हमने भी देखी है ऐसी घटनाएं, ज्ञान में आने के पहले सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और ज्ञान में आते ही कुछ टाइम के बाद ऐसा कुछ हो जाता है कि लोगों को भी मौका मिल जाता है, देखा आप गए ना ब्रह्मा कुमारी में, अब ये हुआ आपके साथ, आपने पूजा पाठ छोड़ी ना, उसका फल है ये, आपके उसका श्राप लग गया, ऐसे ऐसे भी लोग कह देते हैं। तो ऐसे अनुभव, बिजनेस में घाटा हो गया, एकदम पहले बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, ज्ञान में आने के बाद घाटा हो गया, तो क्या भला हो गया, ये कल्याण हो गया इसमें, क्या कहेंगे। ऐसे कोई भी घटना हो सकती ना, पति ने शरीर छोड़ दिया, जवान बेटा चला गया, ज्ञान में आने के बाद, मानो अब कब एक्सीडेंट हो जाएगा, कब किसको, आज तो ऐसे ऐसे हार्ट अटैक होते हैं पता ही नहीं चलता कब कौन चला जाता है, और मानो ऐसा हो गया तो कल्याण हो गया या बुरा हो गया, क्या कहेंगे। क्या कल्याण हुआ, अब बिजनेस में घाटा हो गया उसमें क्या कल्याण हुआ, मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ आप कैसे उसको बिंदु लगाओगे और अपनी स्थिति को अचल रखोगे। हाँ, क्योंकि क्योंकि व्यक्ति को तो बहुत चिंता हो जाती है, इतना धन उसका कैसे बैलेंस करेंगे, इतनी हानि हो रही है। हाँ जी, कल पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, और पर कल पहले क्यों हुआ था उसका, हाँ उसका उत्तर आना चाहिए ना हमको, कि यही हमारे ही कोई कर्मों का हिसाब किताब है, जिसके कारण भी हमारा हुआ, उसके साथ कोई हमारा लेन देन था और वो चुकता हो गया। तो आप अगर हम ये समझेंगे कि हमारा पुराना कर्ज था चुकतू हो गया, हम और हल्के हो गए, अभी हमने ही कमाया था, हम अभी भी कमा सकते हैं, हमारी आवश्यकताएं तो पूरी होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमको खाने पीने को नहीं मिलता है और हम कोई रोड पे आ गए, तो अगर इतना भी हमारे पास है तो भी हमें भगवान को धन्यवाद देना है। और ऐसा होता है कि फिर उसके बाद इतना अच्छी हमारी स्थिति हो जाती है जैसी पहले भी पहले कभी नहीं थी, अगर निश्चय अटूट है तो। और जी, नथिंग न्यू मतलब वही, कल पहले भी हुआ था, कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी हम विजयी बने थे, अभी भी और आगे भी। तो ये बिना निश्चय के नहीं हो सकता, ड्रामा पर जब हमारा निश्चय है, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, मानो पति ने शरीर छोड़ दिया, अब पति ने शरीर छोड़ दिया तो दुनिया के हिसाब से तो बहुत बुरा हो गया, जिंदगी खत्म हो गई, माना कितना एक अकेली महिला जो है वो रहती है उसके लिए समाज में मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाबा का बनने के बाद वो पतियों का पति हमें मिला है, वो बाबा हमारे साथ है, तो फिर अगर हमारे कोई और बंधन नहीं है, कोई ज्यादा जिम्मेवारी नहीं है, तो हम अपना ज्यादा समय बाबा की सेवा में लगाकर और ही अपना अच्छा भाग्य बना सकते हैं, तो कहेंगे निर्बंधन हो गए। तो कल्याण क्या हुआ उसमें, दुनिया के हिसाब से बुरा हो गया, लेकिन हमारे लिए क्या कल्याण हो गया, और ही हमें सेवा का समय मिला, चांस मिला, हम ज्यादा समय अपना पुरुषार्थ में लगा सकते हैं, तो अविनाशी कमाई, अविनाशी भाग्य में हमारी वृद्धि, हम जितना चाहें उतनी कर सकते हैं, नहीं तो परिवार को समय तो देना होता है ना, तो इसीलिए। और बाबा ने हमें ये समझ तो दी है कि जाना तो सबको है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो थोड़ी आत्मा गई, आत्मा तो आगे गई अपना पाठ बुझाने के लिए, तो उतने दुखी भी नहीं होते हम जो दुनिया वाले आंसू बहाते रहते हैं किसी के जाने के बाद। वो एक सुनते नहीं है, एक वो था एक्टर जिसने शरीर छोड़ा, हाँ सुशांत नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला जो एक्टर, टीवी एक्टर था, उसकी माँ ज्ञान में चलती थी, वो लेकर के भी आई थी उसको यहाँ पर, और 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक, वो हार्ट अटैक वाले तो अचानक ही जाते हैं, कि वो रात को सोया और सुबह फिर उठाई नहीं, और माँ रोई नहीं, मतलब जवान बेटा किसका चला जाए, और कोई साधारण बेटा भी नहीं था वो, मतलब एक्टर है माना प्रसिद्ध था, पूरा भारत उसको जानता था, और फिर वो रोई नहीं तो वो भी सारा वायरल हो गया कि वो बेटे के अंतिम संस्कार में माँ थी और वो रो नहीं रही थी, तो क्यों नहीं रो रही थी, तो ब्रह्मा कुमारी इसमें जाती है। अब वो ब्रह्मा कुमारी इसमें क्या ऐसा सिखाते हैं जो अब किसी के जवान बेटे की मौत हो जाए तो क्या हाल होगा उसका, सोच सकते हैं ना, नॉर्मल जो दुनिया में है लोग, किसी का चला जाए बेटा तो। और यहाँ तो बाबा कहता है अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, और बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, और रोए और आंख से आंसू आ गए तो फेल होना है, पास होना है, तो वो तो पास हो गई और सेवा भी हो गई। पूरे भारत को पता चला कि भाई ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के कारण आज इसकी इतनी अच्छी स्थिति है। तो किया तो उसने सब कुछ अपने बेटे के लिए जो भी उसको करना था, लेकिन रोध होकर नहीं, दुखी होकर के नहीं, लेकिन जिसको बाबा कहता है हाँ समझदारी से उसको दुआएं देते हुए, क्योंकि पता है अब चली गई है आत्मा तो उसको वापस तो आना नहीं है, तो मेरा फर्ज तो मुझे पूरा करना है, लेकिन खुद भी दुखी नहीं होना है। और यूं भी अपन कहते हैं कि अगर हम दुखी होते हैं तो हम उस आत्मा को भी दुखी कर रहे हैं। तो ड्रामा का ज्ञान सही समय पर हम यूज करें, जैसे कहा ना ज्ञान और योग की शक्ति ही हमें अचल बनाती है, तो जितना हम समय पर ज्ञान को यूज करेंगे उतना हम हलचल में नहीं आएंगे। फिर मानो प्रकृति के पेपर जो आते हैं, जैसे हमारा शरीर है, शरीर बीमारी आ गई, कोई ऐसी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी की तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई असाध्य बीमारी आ जाती है, आजकल वो भी पता नहीं चलता है, जब आप चेकिंग कराते हैं तब पता चलता है, हाँ ये हार्ट की बीमारी हो गई, या हाँ किसी को कैंसर हो गया, या जो भी आजकल कई तरह की बीमारियां होती हैं, जो फिर जिंदगी भर आपको साथ में बीमारियों के साथ ही जीना है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि हमें बीमारी कॉन्शियस नहीं बनना है। क्या बनना है? नहीं तो कई अरे ये हो गया, ऐसा क्यों हो गया, अभी कैसे चलेगा, कैसे ठीक होगा, ठीक भी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कितना टाइम बचा है, अब सेवा क्या करेंगे, कैसे पुरुषार्थ करेंगे, इन प्रश्नों में चले गए तो क्या कर रहे हम अपने आप को, हलचल में आ गए ना, बीमारी आते ही मन हलचल में आ गया, मन अशांत हो गया, कमजोर हो गया, नहीं, लेकिन बीमारी शरीर को आई है, मैं आत्मा तो स्वस्थ हूं, मन स्वस्थ है तो तन को वो स्वस्थ करेगा, मन शक्तिशाली है तो कितना भी शरीर बीमार है सूली से कांटा अनुभव होगा, सूली जैसी बीमारी भी कैसी अनुभव होगी, उसका कोई कष्ट नहीं होगा। और अगर मन कमजोर है, बीमारी छोटी भी है तो भी बीमारी बड़ी लगेगी, उसका दुख उसका दर्द हमें ज्यादा महसूस होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अशरीरी स्थिति में रहना, जितना हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहेंगे उतना ही बाबा की दुआएं भी हमें मिलती हैं और हम हील भी करते हैं अपनी बीमारी को। अपने यहाँ जो कैट प्रोग्राम चलता है ना, जो हार्ट पेशेंट्स के लिए चलता है आजकल, वो और भी बीमारियों के लिए करने लगे हैं, डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, मोटापे के लिए, लिवर के लिए, लिवर में भी जो फैटी लिवर हो जाता है वो सब के लिए भी वो करने लगे हैं। तो क्या सिखाते हैं, कैसे हम अपने शरीर को भी, जिस भी अंग में रोग है उस रोग को भी अपने आत्मा के, जो भी हमारे गुण हैं आत्मा के निजी गुण हैं, वो एक एक गुण का जो कनेक्शन है एक एक अंग से है, वो एनर्जी उसको हील करती है। जैसे कहते हैं कि हार्ट के लिए लव की एनर्जी चाहिए, प्रेम, प्रेम का गुण, ऐसे ही फेफड़ों के लिए शांति की एनर्जी, ऐसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हैप्पीनेस की एनर्जी चाहिए। तो वो जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में उस गुण में स्थित होकर के बाबा से वो शक्ति, बाबा तो प्यार का सागर है, सुख का सागर है, खुशी का दाता है, शांति का दाता, जो भी हम बाबा से वो लेकर के और उस अंग को हम वो शक्ति देते हैं, तो फिर वो हील होता है। दवाई लेनी है दवाई लेने के लिए बाबा हमें मना नहीं करता है, या जो भी पैथी से आप इलाज कर रहे हो, जो भी दवाई आयुर्वेदिक लो या होम्योपैथिक लो या एलोपैथिक लो, आजकल तो बहुत प्रकार के मेडिसिन होते हैं, कोई भी दवाई जो आपको सूट करती है, क्योंकि ये शरीर की प्रकृति के लिए प्रकृति के तत्व ही चाहिए, तत्वों से बना हुआ शरीर है ना, तो दवाइयां प्रकृति के तत्व हैं, तो वो जो इसको चाहिए वो तो देना ही है। लेकिन जो सूक्ष्म एनर्जी, क्योंकि आज मनोकायिक रोग हैं, साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं, तो मन की जो हमारी वृत्तियों में नेगेटिविटी आई हुई है, उसके कारण जो बीमारी आई है, वो चुकतू करने के लिए हमें उसको पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करना है। और वो ऐसे हम जब चेंज करते हैं तो दवा और दुआ, बाबा कहता है दवा अपना काम करती है और ये दुआ काम करती है और हम क्योर होते हैं, माना। नहीं तो दवाइयां लेने से सिर्फ बीमारी दबती है थोड़ा समय के लिए और फिर वापस वैसे आ जाती है, तो हमें जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, तो ये फर्क पड़ता है। तो जितना हम एकाग्रता से उसे कर पाते हैं, तो बहुत अपने भाई बहनों के ऐसे अनुभव है कि कैसे उन्होंने परमानेंट अपने उसको बीमारियों को हील कर लिया, ऐसे भी मिसाल है। और नहीं तो यूं भी है कि लास्ट तक हमें, क्योंकि शरीर के हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं, पूरा चुकतू करके ही यहाँ जाना है, पावन बने बिना तो आत्मा को घर जाना नहीं है, तो फिर हम देखते हैं हमारे महारथी भाई बहने, जो भी दादियां हमारी रही, बड़े भाई रहे, सबके शरीर के हिसाब किताब थे, लेकिन कभी भी उनकी स्थिति पर उसका असर नहीं आया, बीमारी अपनी जगह रही, हिसाब किताब चुकतू करते रहे, ना तो सेवाओं पर असर आया और ना ही उनकी मन की स्थिति पर। मन सदा अचल अडोल स्थिति में रहा, बीमारी ने मन को हिला दिया हो, वही राज मालूम है ये सब क्यों हो रहा है और अब ये सब खत्म होने वाला, दो युगों तक आत्मा और शरीर दोनों ही निरोगी होंगे, सत्ययुग और त्रेता। और प्रकृति में जो आपदाएं आती हैं, आज कई लोग उन आपदाओं के प्रभाव में आ जाते हैं, भूकंप आ जाता है, कहीं तूफान आ जाता है, सुनते हैं ना हम, या कहीं बाढ़ आती है, तो कोई ना कोई प्रभाव में, चाहे हम या हमारे कोई संपर्क वाले, जैसे भुज में भूकंप आया था, याद होगा कुछ साल पहले, या कच्छ भुज में भूकंप आया था, तो लाखों लोग मरे थे वो भूकंप के अंदर। तो वहां पर भुज में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें अपना एक परिवार रहता था, बीके फैमिली रहती थी, और जब भूकंप बहुत जोर से था तो एकदम हिलने लगी और लगा अभी गिर जाएगी, तो आप भाग के भी नीचे उतरोगे तो भी बचने की संभावना नहीं थी। तो उन्होंने अपने घर में बाबा का कमरा बना रखा था, जब पूरा परिवार ज्ञान में चलता है तो ज्यादातर वो अपना एक बाबा का कमरा भी बनाते हैं। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहीं बैठ जाते हैं बाबा के कमरे में, बाबा के याद में ही जाएंगे, अब जाना तो है ही, तो बाबा को याद करते हुए जाएंगे तो आगे भी सेवा में ही जाएंगे। बाबा हमेशा यही कहते हैं कि कैसे अंतमति सो गति हो हमारी, जो अंतमति होगी वही गति होगी। तो बाबा के कमरे में योग लगाने बैठ गए, तो योग लगाया और बिल्डिंग हिलती रही, काफी चला वो, तो कुछ मिनट तक चलता रहा, तो देखा कि नहीं गिरी और पास वाली बिल्डिंग गिर गई, वो बिल्डिंग नहीं गिरी। तो योग ने काम किया, बाबा का प्रॉमिस है कि कभी भी अगर आप बाबा की याद में हैं, अशरीरी स्थिति में हैं आप, बाबा कहते हैं अकाल स्थिति आपको अकाल मृत्यु से बचाएगी, ये अभी कुछ दिन पहले ही बाबा के वरदान में आया था, है ना। तो वो बाबा का जो वादा है कि भट्टी में भी बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे, तो बाबा कहते हैं पानी वहां तक आएगा लेकिन आप तक नहीं आएगा, वो आप सेफ हो जाएंगे, तो प्रकृति भी आपकी दासी हो जाएगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो बाबा की याद की शक्ति ने वो काम किया कि वो, और ऐसे बहुत बाबा के बच्चों के अनुभव हैं, केवल ये तो मैं एक अनुभव सुना रही हूँ, ऐसे कितने जो इन स्थितियों में होते हैं और कैसे वो अनुभव करते हैं कि बाबा को याद करते हैं और कैसे रक्षा हो जाती है ना। एक एक कहानी भी आती है इसके ऊपर कि एक बार एक संत थे, वो अपने शिष्यों के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे और उसी समय भूकंप आ गया तो सारे शिष्य भागने लगे कि पता था कि भूकंप आया है, माना गिर सकता है, लेकिन वो वहीं बैठे रहे। और फिर थोड़े समय के बाद ठीक हो गया, कुछ गिरा नहीं, मतलब सब हिलना मिलना बंद हो गया। तो वो सारे फिर अंदर आए और उनसे कहने लगे कि गुरुजी आप यहीं बैठे रहे, इतनी जोर से भूकंप आया, आप गिर जाता तो। उन्होंने कहा कि आप लोग भागे, मैं भी भागा था, लेकिन मैं अंदर भागा और आप बाहर भागे। तो अंदर भागा माना मैंने अपनी स्थिति को परमात्मा की याद में स्थिर कर दिया, कि पता है कि अगर जाना है तो किसकी याद में जाना है। तो ऐसे लोग मरने से डरते नहीं है। तो वैसे ही परमात्मा तो वैसे भी रक्षक हैं और उनसे हमारी रक्षा हो जाती है। तो कोई भी ऐसी प्रकृति की हलचल भी हमें हलचल में न लाए, और वही उसमें या टूट निश्चय अगर हमारा बाबा पर है तो फिर कोई भी पेपर आए, कोई भी तूफान आए, चाहे माया के ही तूफान जैसे कहा, कोई भी ऐसी स्थितियां आए, तो जैसे बाबा सदा अचल अटल अडोल रहे, कुछ भी होते हुए हमारी दादियों को भी हमने देखा। हाँ, यज्ञ में ऐसे नहीं, अब तक भी विघ्न आते हैं, अब तक भी चलता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी जो बाबा पर निश्चय है कि बाबा का यज्ञ है, बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है, उस आधार पर सब अचल अटल अडोल रहते हैं। ऐसे हमें भी बाबा पर, जैसे कहा, स्वयं पर, आत्मा पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, और साथ में अपने परिवार पर भी निश्चय। ये चारों निश्चय के पाए अगर हमारे मजबूत हैं, जैसे ये टेबल के चारों पाए मजबूत हैं, कभी नहीं हिलेगा, लेकिन अगर एक पाया हटा दें तो टिकेगा नहीं। तो ऐसे ही हमारे भी ये निश्चय के चारों पाए, चारों कोने मजबूत हैं, तो कभी भी हम हिलेंगे नहीं, सदा अचल अडोल हमारी स्थिति रहेगी। और अचल अडोल है तो सदा पास विद ऑनर है, नंबर वन है, नंबर वन में आने वाले। और अगर देख सकते हैं ना, अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ कितना कितना हिल जाते हैं। हमें हिलना नहीं चाहिए लेकिन हम हिल जाते हैं। तो अगर हम हिल जाते हैं तो उतना ही हमारी ग्रेड कम हो रही है, नंबर टू या नंबर थ्री, या फेल में तो नहीं जा रहे हैं। तो क्या बनना है, नंबर वन या क्या कहेंगे, नंबर वन ना। तो इसीलिए हमारा पुरुषार्थ सदा यही होना चाहिए कि हम हर स्थिति में, हर पेपर में अचल अडोल रहे हैं। ओम शांति,
ओम शांति। तो सभी अचल अडोल अंगद बैठे हैं, जो कहते हैं हम अचल अडोल अव्यक्त स्थिति में स्थित हो गए, वो हाथ उठाओ। देखो दीदी, और तीन बिंदु लगाने का संकल्प ले लिया जिन्होंने, तीन बिंदु, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु, और प्रकृति के पेपर भी चौथा बताया, वो भी बिंदु। इस प्रकार से हमें अचल अडोल अव्यक्त स्थिति बनाकर रहनी है, और इसी अचल अडोल अव्यक्त स्थिति में हम रिफ्रेशमेंट लेने जाएंगे, और 12 के ट्रैफिक कंट्रोल से पहले हॉल में प्रवेश कर जाएंगे। जो एग्री है इस बात से वो हाथ उठाओ, क्योंकि हमारे राजू भाई जी पहुंचेंगे। हम आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी ब्राह्मण जीवन अचल अडोल चार निश्चय के पैर लगाकर मजबूत बनाई। अब हम सदा अपनी इस स्थिति को ऐसे ही बनाकर रखेंगे। जो ऐसा संकल्प ले रहे हैं वो दो दो हाथ उठाकर धन्यवाद कीजिए दीदी का। थैंक यू, ओम शांति।
बातों पे बिंदु धरो, बिंदु